नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हो गए हैं। ये दक्षिण अफ्रीका की उनकी चौथी आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले श्री मोदी ने 2016, 2018 और 2023 में 2 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों में भाग लिया था। यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये शिखर सम्मेलन प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का महत्वपूर्ण मंच है। श्री मोदी ने कहा कि वे शिखर सम्मेलन में वसुधैव कुटुम्बकम और एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के अनुरूप भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले राष्ट्रपति ने तिरुमाला के श्री वराहस्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किया। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम के अध्यक्ष B.R. नायडू ने राष्ट्रपति का पारंपरिक स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 साल में सीमा सुरक्षा बल BSF को सबसे अधिक आधुनिक बल बनाया जाएगा। आज गुजरात के भुज में BSF के 61वें समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि पूरा देश BSF के जवानों की वीरता को सलाम करता है। उन्होंने कहा कि BSF के कारण देश की सीमा सुरक्षित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ 11वें बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 के संबंध में आयोजित की गई थी। इसमें विद्युत मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिवों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भाग लिया। पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM की प्रथम स्तरीय जांच आज से कोलकाता के न्यू टाउन में शुरू हो गई है। वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का दल इस कार्यशाला में भाग ले रहा है। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की समीक्षा के लिए भी ये दल पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण का आज दूसरा दिन है। फिल्मों से जुड़ी हुई गतिविधियां सुबह से ही चल रही हैं। पणजी स्थित कला अकादमी में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री Dr. L. मुरुगन तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने प्रतिष्ठित मास्टर क्लास श्रृंखला का शुभारंभ किया। Dr. L. मुरुगन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष का इफ्फी इसीलिए भी खास है क्योंकि 50 महिला निर्देशकों को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर दिया गया है।
पूरे फिल्म महोत्सव में 200 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी और इस महोत्सव की विशेषता ये है कि इसमें 50 महिला निर्देशकों की फिल्में दिखाई जाएंगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। साथ ही हम शांताराम जी, गुरुदत्त और पद्मिनी जैसे दिग्गजों को भी सम्मानित करेंगे।
इस अवसर पर प्रसिद्ध फिल्ममेकर मुजफ्फर अली भी कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने उद्घाटन के तुरंत बाद इफ्फी 2025 की पहली मास्टर क्लास शुरू की। इस दौरान मुजफ्फर अली ने उमराव जान, गमन और आगमन जैसी कालजयी फिल्मों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। नेपाल के 12 जिले के सिमरा में बुधवार को प्रदर्शनकारी जेंजी युवाओं और UML के सदस्यों के बीच झड़प हुई। इसमें जेंजी युवाओं के साथ मारपीट की शिकायत के बाद CPN UML के अरविंद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। CPN UML नेता महेश बासनेट के स्वागत में पहुंचे UML सदस्य सिमरा हवाई अड्डे पर पहुंचे थे, उसके बाद ये घटना हुई। आज विश्व टेलीविजन दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1996 में एक प्रस्ताव के जरिए 21 नवंबर को इसके मनाए जाने की घोषणा की थी। भारतीय टेलीविजन नेटवर्क 23 करोड़ घरों के 90 करोड़ दर्शकों तक पहुंचता है। देश में इस वर्ष मार्च तक 918 निजी सैटेलाइट चैनल संचालित थे, जो इसकी मजबूती को दर्शाता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने आंतरिक और बाहरी कार्यक्रमों द्वारा जनसंचार सेवा, विकास के संदेश फैलाने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने भारत के ही आयुष शेट्टी को 23-21, 21-11 से हराया। उधर पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी इंडोनेशिया के फजल अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री की जोड़ी से 19-21, 15-21 से हार गई। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।